बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है लबनान, दाइश का अगला हदफ। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या लबनान दाइश का अगला हदफ है। इस सिलसिले में हम दाइश के बारे में लबनान की फ़ौज के सरबराह के ताज़ा बयान और लबनान के शिमाली और मशरक़ी इलाकों में दरअंदाजी के लिए दाइश की मुसलसल कोशिशों के बारे में गुफ्तगू करेंगे और दाइश की दरअंदाजी को रोकने के लिए फ़ौज और हिज़्बुल्लाह की हमाहंग कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के साथ ही लबनान में दाइश के अहदाफ और लबनान की हुकूमत, अवाम और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सऊदी हुकूमत की रेशा दवानियों के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
यूं तो लबनान इस्लामी इस्तकामत का अहम महाज होने की वजह से हमेशा सहयोनी और अमरीकी साजिशों का शिकार रहा है, लेकिन हालिया दिनों में आलमी तसल्लुत पसंद ताकतों और उनके इलाकाई इत्तेहादियों ने खास अहदाफ के तहत लबनान में अपनी साजिशों में इजाफा किया है और इसके लिए दहशत गर्दों को भी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में हिज़्बुल्लाह लबनान के सिक्योरिटी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने शुमाल मशरकी लबनान के इलाके बुका में मुजाहमत के कमांडरों के साथ मुलाकात में कहा है कि तकफीरी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग और उनको शिकस्त देना मुजाहमत की तरजीहात में शामिल है। हिज़्बुल्लाह लबनान के सिक्योरिटी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने बुका और शाम के सरहदी शहर अल कलमून में तकफीरी दहशत गर्दों के हमलों में इजाफे के पेश नज़र बुका का दौरा किया और वहाँ मुजाहमत के कमांडरों और अफसरों से मुलाकात की। सैयद हसन नसरुल्लाह ने मुजाहमत के कमांडरों को खिताब करते हुए कहा कि कामयाबी दबाव और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद ही हासिल होगी और ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी और लबनान से सहयोनी गासिमों का इनकलाब भी सब्र कोशिश और ईमान का ही नतीजा है। दरअसना हिज़्बुल्लाह लबनान के अहम ओहदेदार शेख नबील काउक ने बालबक में एक तकरीब में ताकीद के साथ कहा है कि हिज़्बुल्लाह ने लबनान में तकफीरियों का रास्ता बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह लबनान की सियासी कौंसिल के सरबराह सैयद इब्राहिम अमीनु सैयद ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह तकफीरी मंसूबे के खिलाफ कामयाब होगी और उसे शिकस्त से दोचार कर देगी। ऐसे हालात में कि जब लबनान को तकफीरियों और सहूनियों के हमलों का सामना है, इस मुल्क की फौज को जदीद साजो सामान और असलहे से लैस करने की इस्लामी जमहूरी ईरान की कोशिशों के मुखालफत का भी आगाज हो गया है। ताहम लबनान की डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने कहा है कि लबनानी फौज को ईरानी हथियारों से लैस किए जाने की मुखालफत दर हकीकत दहशत गर्दी से मुकाबले में लबनानी फौज की ताकत में इजाफे की मुखालफत है। लबनान की डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह तलाल अरसलान ने कहा है कि ऐसे हालात में कि जब सिक्योरिटी के लिए खतरात नीज तकफीरी दहशत गर्द गुरोहों और खासतौर पर दाइश के मुकाबले के लिए लबनानी फौज को पहले से ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। बाज़ मुल्की और गैर मुल्की फरीक लबनान की हुकूमत पर यह दबाव डाल रहे हैं कि ईरान के हथियारों को कबूल न करे। तलाल अरसलान ने हुकूमत लबनान पर बाज़ दाखिली सियासी गुरोहों के दबाव और इस मसले में अमरीकी मुदाखलत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस दबाव का मकसद लबनानी हुकूमत को दहशतगर्द गुरोहों और दाइश और जबहतुल नसरा के मुकाबले में कमजोर करना है। लबनानी पार्लियामेंट के सरबराह नबी बिर्री ने भी बैरूत पर अमरीका और लबनान के मगरिब नवाज 14 मार्च ग्रुप की जानिब से डाले जाने वाले दबाव का जिक्र करते हुए कहा है कि ईरान के हथियार कबूल न करने के लिए दबाव ऐसे हालात में है कि जब लबनान को दहशत गर्दों की जानिब से खतरात लाहिक हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से हथियारों की मदद की मुखालफत गैर मंतिकी और मिल्लत लबनान से दुश्मनी की अलामत है। दरअसल ईरान की कौमी सलामती के आला कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने सितंबर के आवाखिर में लबनान के अपने दौरे में कहा था कि बैरूत की दरख्वास्त की बुनियाद पर तेहरान लबनानी फौज को ईरानी हथियारों से लैस करने के लिए आमादा है। लबनान के रोजनामा अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरी ईरान की तरफ से दहशत गर्दों से मुकाबले के लिए लबनान की फौज को ईरानी हथियारों से लैस करने के ऐलान के बाद अमरीका ने लबनान के लिए इमदाद बंद करने की धमकी दी है। ईरान से मदद लेने की सूरत में अमेरिका की जानिब से लबनान की फौजी इमदाद बंद किए जाने का ایسے وقت میں اعلان کیا گیا کہ جب واشنگٹن ہر سال صہیونی حکومت کو $3 ارب کی مدد کے علاوہ آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم سمیت اسرائیل کے فوجی نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر دیتا رہتا ہے۔ لبنان کے خلاف صہیونیوں اور تکفیری دہشت گردوں کے ایک ساتھ حالیہ حملے، ملک کے اندر کچھ جماعتوں کی مشتبہ سیاسی سرگرمیاں اور امریکہ اور اس کے کچھ علاقائی اتحادیوں کی جانب سے لبنانی حکومت پر دباؤ تجزیہ نگاروں کے اس خیال کو تقویت دے رہے ہیں کہ سامراجی طاقتیں دہشت گردوں کی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے لبنان میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
ناظرین، لبنان کو لاحق خطرات سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ لبنانی فوج کے سربراہ جنرل جان قہوچی نے ایک غیر ملکی جریدے سے گفتگو میں لبنان میں دراندازی اور خانہ جنگی کرانے کے لیے داعش کی کوششوں کا انکشاف کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں لبنان کے شمال مشرقی سرحدی علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کی سرگرمیوں اور فوج اور حزب اللہ کے خلاف ان کی کارروائیوں کا ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ حزب اللہ کے سربراہ نے ملک کو تکفیری دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کو حزب اللہ کی اولین ترجیحات میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے شام کی سرحد کے قریب بعض علاقوں کا دورہ کیا جہاں حزب اللہ کے سپاہی فوج کے ساتھ مل کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کو ملک کے عوام کے سبھی طبقات اور سبھی فرقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے، جن میں شیعہ، سنی، حتی عیسائی سبھی شامل ہیں۔ ویسے تو لبنان کے خلاف کافی عرصے سے سامراجی اور صہیونی حلقوں کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں، لیکن جب سے حزب اللہ نے جنوبی لبنان کو صہیونی حکومت کے قبضے سے آزاد کرایا ہے اور اس کے بعد 33 روزہ جارحیت میں صہیونی حکومت کو شکست فاش دی ہے، لبنان اور حزب اللہ کے خلاف امریکہ، صہیونی حکومت اور علاقے کی رجعت پسند حکومتوں کے منحوس مثلث کی سازشیں بڑھ گئی ہیں۔ ان سازشوں میں اس وقت اور بھی تیزی آ گئی جب حزب اللہ نے شام کے خلاف مذکورہ منحوس مثلث کی کوششوں کی مخالفت اور شام کے عوام اور حکومت کی حمایت کا اعلان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ، صہیونی حکومت اور علاقے کی رجعت پسند حکومتوں کا مثلث حزب اللہ کو خطے میں اپنے اہداف کی راہ میں موجود اہم ترین رکاوٹوں میں شمار کرتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تمام تر دعووں کے باوجود دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ داعش امریکہ، صہیونی حکومت اور ان کے علاقائی اتحادیوں کی سازشوں کا ہی نتیجہ ہے اور انہی طاقتوں نے داعش کو تشکیل دیا ہے اور امریکی اور صہیونی اہداف میں ہی یہ گروہ کام کرتا ہے۔ اس لیے اگر لبنان داعش کا اگلا ہدف ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر شام اور عراق کے بعد لبنان داعش کا اگلا ہدف نہ ہو تو تعجب ہوگا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار مشرف حسینی۔ اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ ہوگا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار، قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی روابط کے پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس سے، اور کراچی سے پروفیسر شمیم اختر کو پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں لندن، جہاں ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت مشرف حسینی صاحب موجود ہیں، ممتاز تجزیہ نگار، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسینی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔
حسینی صاحب، لبنان میں فوج کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک داعش کے نشانے پر ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
جی ہاں، آج کل جس طرح حالات پھیل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم سیریا میں ان کی تکفیریوں کی شکست کے بعد ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، ایک گراؤنڈ چاہیے تھا جہاں وہ اپنی شکست کو ایک کامیابی کے طور پر ظاہر کر سکیں، تو اس میں انہوں نے عراق کا رخ کیا۔ عراق میں بھی کوئی خاطر خواہ وہ نتیجہ ان کو حاصل نہیں ہوا جس طرح شروع کے دنوں میں انہوں نے چند شہروں میں فوراً ہی قبضہ کر لیا، لیکن فوراً ہی اس کے بعد ابھی وہاں پہ حالات سنبھل گئے ہیں، وہاں پہ بھی وہ زیادہ قدم نہیں جما سکے۔ لہٰذا ان کو ہدف لبنان کو بنانا ہی چاہیے تھا، اور کوئی ان کے پاس چارہ کار بھی نہیں ہے کہ وہ لبنان کی طرف آئیں۔ اصل میں اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے کہ جب سے لبنان میں پہلی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے خلاف और वहां पर जो इसराइल को शिकस्त हुई है वो भी बस दरअसल एक साउंडिंग कर रहे थे, वो देख रहे थे कि इस वक्त क्या हालात हैं। असल हदफ आप जानते हैं खलीज के ममालिक बिलखसूस ईरान के बारे में उनके अहदाफ क्या थे, वो तो मतलब है जो जंग हुई हिजबुल्ला और उनके दरमियान वो एक सेंसर था, चेक करना चाह रहे थे वो कि क्या सूरत हाल है, मगर उस शिकस्त ने इनको मजीद प्लानिंग को किया और उसके बाद से आप देखेंगे जंग और ये हालात फैलते चले जा रहे हैं। इसमें आपके मिडल ईस्ट में जो हुकूमतों के खिलाफ जो लोगों का उभार था वो सूरत हाल भी थी, फिर उसके बाद बिलखसूस शाम की सूरत हाल जो थी उसका भी इसी से ताल्लुक था कि उन्होंने कहा कि शाम और भी ईरान का इत्तेहादी है और लबनान भी एक मेन इत्तेहादी की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसी तरीके से हमास और इन्हीं के खिलाफ ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, फलस्तीन में कुछ हो नहीं सकता, सीरिया में वो ऑलरेडी शिकस्त खा चुके हैं और इस वक्त लबनान हदफ है कि वो समझते हैं कि शायद अगर लबनान में वो कुछ कदम जमा लें या कुछ एक सूरत हाल ऐसी पैदा कर लें जहां अफरा तफरी की सूरत हाल, कैओस की सूरत हाल अगर वो पैदा कर लें तो शायद उनको अपने अहदाफ हासिल करने में आसानी होगी। तो मेरे ख्याल में ताज्जुब की बात नहीं है कि वो लबनान का रुख करें और बिलखसूस जनूब लबनान की तरफ आने का तो उनका कोई इम्कान नजर नहीं आता कि वहां पर कोई कामयाबी खातर खा हासिल कर सकें, लेकिन दीगर इलाकों में एक किस्म का इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के कोई एक जर्ब लगाने की सूरत में एक काम कर सके कि वो कोशिश कर सकते हैं और वही चीज अभी नजर आ रही है जिस तरीके से हमें हालात नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनी साहब। और नाज़रीन, हमारे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के मुमताज़ दानश्वर और सीनियर तजिया निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब मौजूद हैं। शमीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, लबनानी फ़ौज के सरबराह का कहना है कि बाज़ ताकतें दाइश के ज़रिए लबनान में खाना जंगी शुरू कराने के दर पर हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो लबनान में खाना जंगी कराना चाहती हैं?
ये वही ताकतें हैं जो लबनान में पहले भी खाना जंगी करा चुकी हैं और ये रजत पसंद अनासिर हैं और इनकी पुश्त पे आलमी इस्तकबार यानी अमरीका का हाथ है। और अभी आपने सुना होगा कि 1 अक्टूबर को अमरीका की वेबसाइट ट्रुथ आउट पर नॉम चॉम्स्की साहब ने बड़ा तफसीली बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि उनका अपना नुक्ता नज़र है और हम उनके हर बात से तो इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि दरअसल अमेरिका ने पूरी दुनिया में बशमूल मशरक वस्ता में जमहूरी क़ुव्वतों को कुचला है और कुचलने के बाद उसने रजत पसंद ताकतों की हिम्मत अफजाई की है। उन रजत पसंद ताकतों में कुछ ताकतें ऐसी थीं जो सेकुलर थीं, यानी सेकुलर भी रजत पसंद ताकतें हैं, यानी अस्करी अनासर किसी मुल्क के उनकी सरपरस्ती की है जैसे मिस्र में कर रहा है, और कुछ मजहबी इंतहा पसंद हैं और इसमें जाहिर सी बात है कि फिरके वाराना मनाफरत फैला के और अपने दोनों तरफ से कुछ लोगों को किराए के कातिलों को इस्तेमाल करके एक ऐसा तासर पैदा करना उसका मकसद है कि गोया शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। चाँचे अब मशरक वस्ता में सूरत हाल है उसको मगरबी मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है गोया सुन्नी अवाम शिया अवाम से बरसर पैकार है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अमेरिका और उसके हवारीन जिसमें खलीजी रजवाड़े हैं, सऊदी अरब है, नोम चॉम्स्की ने खास तौर से अमेरिका का इल्ज़ाम तो खैर दिया ही है, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि दरअसल ये मंबा है और तमाम मखजन है फिरके वारियत का, रजत पसंदी का और दहशतगर्दी का। और सऊदी अरब को उन्होंने मुद्दाम करार दिया है कि वो उन रियासतों को जिन रियासतों में जमहूरी क़ुव्वतें उभर रही हैं उनको कुचलने के लिए वो रजत पसंद अनासर की हमदर्दाई करता है और इस सिलसिले में अमेरिका से इसका बराबर तआवुन है। तो अब देखिए, शाम में जो 3.5 साल से खाना जंगी हो रही है तो न सिर्फ वो लेबनान को मुतासर करेगी बल्कि तमाम हमसाया रियासतों को जिसमें उर्दन भी हैं, तुर्की भी हैं, वहाँ महाजरीन जा रहे हैं और सरहद पे तसादुम हो रहा है। तो इस तरह से अमेरिका का ये खेल है कि बज़ाहिर तो वो दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए कार्रवाई कर रहा है लेकिन इससे उसको मौका मिलेगा इन ममालिक के अंदर मदाखलत का और अपने پانچویں کالم کو وہاں پہ داخل کرنے کا، تاکہ اگر اس وقت نہیں تو آئندہ جا کے وہاں تخریب کاری کرائے. تو یہ مسئلہ جو ہے لبنان کا جہاں تعلق ہے، سیریا اور لبنان تو گویا چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے، اور ایک جگہ اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کوئی بحران اٹھتا ہے تو لبنان بھی اس سے متاثر بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لبنانی فوج کے سربراہ کے خدشات ہیں وہ بالکل صحیح اور واضح ہیں، لہذا لبنان میں قومی یکجہتی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کا سر جواب کر سکیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور ناظرین، قندیل عباس صاحب کے ذریعے اسکائپ پر رابطہ نہیں ہو سکا، ہمارے ساتھیوں نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ان سے رابطہ کیا ہے. قندیل عباس صاحب، السلام علیکم. جناب، لبنان کی صورتحال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. لبنانی فوج کے سربراہ نے ایک جریدے سے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ بعض طاقتیں لبنان میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہیں، اور داعش کی مدد انہوں نے لی ہے، اور داعش کے ذریعے لبنان پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے، داعش در اندازی کی کوشش بھی کر رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو طاقتیں لبنان میں داعش کے ذریعے خانہ جنگی کرانا چاہتی ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ وہ اس خانہ جنگی کے ذریعے کس کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟
جو گریٹر اسرائیل کا ایک سازش بنائی گئی تھی، ایک پلان بنایا گیا تھا، اس کے لیے ان اس پلان کے رسے میں سب بڑی رکاوٹ خود جو لبنان ہے وہیں سے پیدا ہوئی، کیونکہ جو مزاحمت کی تحریک تھی خاص طور پر حزب اللہ کی شیت میں، اس کی وجہ سے اسرائیل کو شدید ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. بلکہ جب ساؤتھ لبنان کو جو جس سے انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوتا، اس کو بھی اللہ نے آزاد کرا لیا، اور اللہ نے جس طرح جدوجہد دیا اس سے فلسطینی تنظیموں خاص طور پہ حماس اور جہاد اسلامی کو بھی بہت تکلیف ملی. اس کی وجہ سے جو عالمی جو سامراجی طاقتیں تھیں ان سے جو بہت سے ریاستیں جو ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسرائیل کو بیس بنا کر پورے مڈل ایسٹ میں اپنا سلسلہ قائم کرنا چاہ رہے تھے. اب چونکہ سیریا میں جب انہوں نے لبنان کو متاثر کرنے کے لیے سیریا میں بھی اس طرح کی ایک سازش ہوئی، اور بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے وہاں پر ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی گئی، اور اس میں جو گروپ تھے نصرہ فرنٹ اور داعش جیسے، ان کو بین الاقوامی کرتی اور ان کے جو حواری تھے عرب سربراہ، انہوں نے بھی انتخاب کیا، اور وہ وہاں پر بھی اپنی سازش میں ناکام رہے. اس کے بعد عراق میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی عوامی ریزسٹنس کی وجہ سے داعش کو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کامیابیاں نہیں ملی. اب صورت حال یہ ہے کہ جو لبنان کے اندر مذمتی تحریک ہے اس نے ایک عوامی حیثیت اختیار کر لیا، کیونکہ جو وہاں کا ایتھنک اور قومی اور مذہبی اسٹرکچر ہے اس میں ایسا ہے کہ وہاں پہ شیعہ سنی بروز ملیشیا اور اس کے ساتھ کرسچنز اور دوسرے بہت سی تنظیمیں دی، لیکن عوام نے مل جل کر ایسا پولیٹیکل اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ جس میں سب کو ریپرزینٹیشن مل رہی ہے اور وہاں پر ایک پولیٹیکل سامانی نظر آتی ہے، لیکن اس کو بالکل ڈسٹرب کرنے کے لیے اسی ایلیمنٹ یعنی جو داعش کی شکل میں ہے، جیسے بعد میں انہوں نے سیریا کے اندر اپنی سنکیتیاں بتا رہے ہیں کہ لبنان میں بھی یہی سازش دکھائی دے. لیکن میرا خیال یہ کہ لبنان کے میں یہ سازش میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ آلریڈی وہاں کے عوام نے مذہب سے اس انداز میں تحریکیں شروع کی ہیں، وہ داعش کی سازش کو بھی ناکام بنا دیں گے.
بہت بہت شکریہ قندیل عباس صاحب. حسینی صاحب، لبنان کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں داعش سمیت بہت سے تکفیری دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں، جس میں جبہۃ النصرہ بھی ہے اور دیگر کچھ دہشت گرد گروہ ہیں. اس کے علاوہ جب انہیں موقع ملتا ہے ان دہشت گردوں کو، وہ لبنان کے دوسرے علاقوں میں پہنچ کے دہشت گردانہ کاروائیاں بھی انجام دیتے ہیں. لبنان میں تکفیری دہشت گردوں کی دراندازی کا شام کے بحران سے کیا تعلق ہے؟
جناب، یہ تو اثر میں نے شمس ہے کہ یہ جو آپ جن تنظیموں کا آپ نے نام لیا، اصل ان کا انفراسٹرکچر ایک ہی ملتا جلتا ہے آپس میں، اور ان کی ریسورسز ایک ہی ہیں، ان کی اقتصادی مدد، ان کی عسکری مدد، और इनके निज़ाम को बनाने के लिए इनको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने वाले इनके उस्ताद जो है ना वो सारे एक ही जगह मिलते हैं हमें सब कुछ। किसी का नाम आपने दाइश रख दिया, ISIL रख दिया, या मिसाल के तौर पे इस्लामिक स्टेट रख दिया, या जबहत नुसरा और ये सारी चीज़ें आपने बता दी, वो एक एक ही चीज़ है, एक ही उसके चट्टे बटे हैं। और ये जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इनका आगे इस वक्त आगे जाने के इम्कान नज़र आ रहे हैं शुमाले, उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा कामयाबी इनको हासिल नहीं होगी, लेकिन जो नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं वो ये अंदरूनी तौर पर हिजबुल्ला के अंदर, जिस तरीके से हमारे भाई भी इशारा कर रहे थे कि इसमें इत्तेहाद और यकजहती की जो फिजा हिजबुल्ला ने कायम की है कि वो सिर्फ एक शियों की रहबरी नहीं करी, बल्कि बहुत से मुसलमान और रोशन फिक्र किस्म के लोग भी उनके साथ शामिल हैं और वो भी उनके साथ शामिल हैं। इस फैब्रिक को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उनका ये हिस्सा है। ये जहां तक इन तंजीमों का आपने नाम लिया, ये तंजीमें बजात खुद कोई हैसियत नहीं रखती, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनके उस्ताद, इनके बैकग्राउंड, इनकी फाइनेंशियल बैकर्स, वो असल चीज है कि वो क्या चीज इनसे हासिल करना चाहते हैं। ये तो इस्तेमाल होने वाले लोग हैं और उसमें ये इस्तेमाल होते चले जा रहे हैं। जहां तक आपने सीरिया की सूरत हाल का किया कि सीरिया की सूरत हाल का क्या ताल्लुक है, हम जानते हैं कि असल हदफ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, सीरिया हदफ है, लबनान हदफ है और ईरान हदफ है। इन अहदाफ को तभी मुमकिन है, ईरान के ऊपर तभी हाथ डाला जा सकता है जब इनसे वो जान छुड़ा लें। वो यहां पे ही नाकाम हो रहे हैं, अभी जब इन यहां पे उनको नाकामियां हो रही हैं तो वो कहते हैं हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो ईरान की तरफ का रुख करें। लिहाजा इनके सीरिया के साथ एक शिकस्त के हवाले से उनका बॉर्डर में से बॉर्डर के अंदर तो ये रह नहीं सकते, वहां पे तो ये शिकस्त खा गए, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है तो वो या यहां पे क्रॉस करेंगे या इराक की तरफ क्रॉस करेंगे, जॉर्डन और दीगर ममालिक में क्रॉस करने के उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता है। यहां पे ये हो सकता है पसपाई की सूरत में यहां पर वो दाखिल होकर यहां से फिर वो कार्रवाइयां कर सकते हैं। कलमून के इलाके में जिस तरह पहाड़ी इलाके हैं उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन इलाकों में उनका दाखिल हो जाना दोबारा और दोबारा कार्रवाइयां करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अक्रॉस द बॉर्डर वो काफी कुछ कर सकते हैं और नुकसान वहां पर भी पहुंचा सकते हैं और इन दोनों इलाकों को वो मशगूल कर सकते हैं, इस हवाले से इनका है। दूसरा ये ताल्लुक है कि सीरिया की जो शिकस्त थी वो इनके लिए बहुत बड़ा एक किस्म की एक ऐसी चीज बन जाती, सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके ममालिक के लिए, आलमी इस्तिकबार के लिए भी। हम देखते हैं कि अमरीकी हाई लेवल के लीडर्स भी गए इनके साथ मुलाकातें की, तो वो उन सब की शिकस्त बन जाती है और वो इस वक्त शिकस्त लेने के और शिकस्त को तस्लीम करने के मूड में नहीं है। लिहाजा वो एक शिकस्त, उनको बशार अल असद को हटाना उनका हदफ था, उन्होंने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बशार अल असद को यहां पे रहने दिया जाए। आज बशार अल असद पहले से ज्यादा मजबूत सूरत हाल में वहां पर कायम और दायम है और यहां पर भी उनको शिकस्त का सामना हो रहा है, इराक में भी हो रहा है। ये सारी शिकस्तें बढ़ती चली जा रही हैं बजाय इसके कि उनके लिए किसी फायदे का बायस बनती है, उनके लिए नुकसान का और जरर का बायस बन रही है। आलमी जो लोगों का की सोच और फिक्र है वो इनसे पीछे हटती चली जा रही है और लोग, मैं कहूंगा कि इलाकाई ममालिक भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम तुम्हें डिफेंड कर लेंगे, हम तुम्हें बचाओ सूरत हाल करेंगे, हम तुम्हें बैरूनी खतरात से बचा लेंगे, अंदरूनी इंकलाबात से बचा लेंगे, वो ममालिक भी शायद जो बादशाहते हैं मिडिल ईस्ट की, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अमरीका हमारा तहफ्फुज़ नहीं कर पाता, ये मगरबी ममालिक हमारे तहफ्फुज़ नहीं कर पाते। अगर ये सोच आगे मजीद बढ़ गई तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह और इलाके में इनके कदम जमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनके पास चारा कुछ नहीं रहता कि वो इस इलाके में कहीं ना कहीं सरगर्मी बना के रखें, कहीं ना कहीं को मामला बना के रखें कि चलो भाई सीरिया में ये हो गया तो ये लबनान में भी बढ़ गया, इराक में भी हो गया, कुछ ना कुछ इन्होंने करते रहना, इसके अलावा इनके पास चारेकार ही बाकी नहीं बचता है।
बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनी साहब। और नाज़रीन, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद प्रोफेसर शमीम अख्तर से सवाल करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, लबनान के खिलाफ दाइश और दीगर तकफीरी दहशत गर्द ग्रोहों की सरगर्मियों और इनके हामी हुकूमतों की रेशा दवानियाँ आज अंदाज़ जहाँ हमारी गुफ्तगू का मौजू है। प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब की तरफ चलते हैं, कराची में जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, लबनान के शिमाली और मशरक़ी इलाकों में दाइश और दीगर तकफीरी ग्रोहों की सरगर्मियों की दाइश मुखालिफ नाम नहाद जो आलमी मुहिम में शामिल ममालिक हैं, उन्होंने कभी मजम्मत नहीं की, इनके सरबराह अमरीका ने भी कभी इसकी मुखालफत या मजम्मत नहीं की। अलबत्ता हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके बयानात ज़रूर सामने आते रहते हैं और इनका सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाए, जबकि हिजबुल्लाह सहूनी हुकूमत से भी मुल्क की हिफाजत कर रही है और दहशत गर्दों से भी। تو جو طاقتیں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں ان کا ہدف کیا ہے؟ کیا وہ اس طرح سے تکفیری دہشت گرد گروہوں خاص طور پر داعش کے لیے راستہ ہموار کرنا نہیں چاہتی ہیں؟
اس کا امکان بڑا واضح ہے، اور جہاں تک کہ حزب اللہ کو کمزور کرنا اور غیر مسلح کرنے کا تعلق ہے تو امریکہ کی ایما پہ امریکہ نواز عناصر جو ہیں، میں حریری صاحب کا بھی نام لوں گا، وہ بہت پیش پیش تھے، اور سلامتی کونسل میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وہاں پہ جتنے مسلح عسکریت پسند گروہ ہیں ان سبوں کو غیر مسلح کیا جائے، اور اس سلسلے میں عالمی پروپیگنڈا بڑے زور شور سے یہ کہہ رہا تھا کہ حزب اللہ نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رکھی ہے۔ یہ داعش سے کئی سال پہلے کی بات ہے، تو گویا یہ استعمار کا ایجنڈا ہے پرانا۔ وہ حزب اللہ سے اس وجہ سے خائف ہیں کہ وہ لبنان کی آزادی، اس کی علاقائی یکجہتی اور قومی سالمیت کا صحیح معنوں میں ذمہ دار ہے۔ نہ صرف یہ کہ لبنان میں ملی یکجہتی کا ضامن ہے، بلکہ اس نے فلسطین کی آزادی کے لیے بڑی سرگرمیاں دکھائی ہیں، اور خاص طور سے غزہ کے لوگوں کو حماس کی طرف سے جو تقویت پہنچی ہے، جو ان کو مالی اور عسکری امداد ملی ہے اور اخلاقی امداد ملی ہے، اس کی وجہ سے غزہ کے لوگوں کا حوصلہ بڑھا، اور انہوں نے حزب اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، انہوں نے شکست دی ہے صہیونیت کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہدف ہے استعمار کا، اور استعمار کے جتنے حلیف ہیں، مثلا خلیجی ریاستیں ہیں، انہوں نے غزہ پہ جب اسرائیل کی جارحیت تھی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ خاموش رہے، بلکہ یہ کہتے رہے کہ حماس جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے
جی۔
تو گویا جہاں تک حزب اللہ کا تعلق ہے، وہ حماس کو ایک حریت پسند تنظیم سمجھتا ہے اور اس کی حمایت بھرپور کرتا ہے، اور یہ لوگ جیسے جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ بظاہر یہ داعش کے خلاف سرگرم عمل ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ، تو یہ سب صہیونی جارحیت پہ خاموش رہے، اور مظلوم کو دہشت گرد کہہ کے گویا یہ درپردہ اسرائیل کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ لبنان میں بھی انہوں نے خانہ جنگی کرانے کی بڑی کوشش کی، اور لبنان کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں، میں صاف کہوں گا بلا لگی لپٹی رکھے ہوئے، کہ اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیا جائے، تاکہ وہاں پہ ایک فرقہ وارانہ فستائی حکومت مسلط کر دی جائے، اور وہاں مسلمانوں کو، خاص طور سے جمہوری قوتوں کو، بے بس اور کمزور کر دیا جائے۔ تو اس سازش میں سمجھیے کہ استعمار تو شامل ہے، پیش پیش ہے، بلکہ ان ممالک کے اندر اس کا پانچواں کالم بھی موجود ہے جس کی ان کو حمایت حاصل ہے، اور داعش اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔
جی، بہت بہت شکریہ قندیل عباس صاحب، آپ لائن پر ہیں جناب؟
جی میں سن رہا ہوں۔
جی قندیل عباس صاحب، ابھی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی پروفیسر شمیم اختر کی، کہ جو نام نہاد عالمی برادری ہے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ حزب اللہ نے ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کر رکھی ہے۔ اگر اس میں کسی حد تک حقیقت ہو تو اس پر پہلا اعتراض تو لبنان کی حکومت کو کرنا چاہیے، لبنان کی فوج کو کرنا چاہیے، لبنان کے سیکورٹی اداروں کو اس پر معترض ہونا چاہیے، لیکن لبنان کی حکومت حزب اللہ کی حمایت کرتی ہے، لبنان کے عوام حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں، لبنان کی فوج حزب اللہ کو ملک کی ایک بہت ہی مضبوط دفاعی قوت سمجھتی ہے، لبنان کے سیکورٹی ادارے حزب اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، تو پھر یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، انہیں بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے کیا کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کریں؟
قومی قوانین ہیں ان کے مطابق سٹیٹ ایکٹر یا نان سٹیٹ ایکٹر کو اس وقت کسی किसी एक्टिविटी से मना किया जाता है जब उनकी उस एक्टिविटी की वजह से किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर इसके अलावा वो स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, दोनों को किसी किस्म की भी फॉर्मेट की इजाजत होती है और एक्टिविटीज कर सकते हैं। जहाँ तक हिजबुल्ला का ताल्लुक है तो जाहिर है कि जो लबनान की दाखिली सूरत हाल है उसमें आज तक कभी लबनान हुकूमत को ये शिकायत नहीं मिली कि हिजबुल्ला ने लबनान के कानून को तोड़ा हो या हाईलाइट किया हो। इसी तरह जो रीजनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जितने कानून है उसमें भी आज तक कोई ऐसा एविडेंस किसी इदारे के पास नहीं आया कि हिजबुल्ला ने किसी बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की हो। तो इन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो जिस तरह लबनान की हुकूमत या कोई और हुकूमत या कोई बैन अल-अक़वामी इदारा हिजबुल्ला की एक्टिविटीज के ऊपर कोई हक कर सकता है। हिजबुल्ला ने अपनी सरजमीन को गैर किसी गैर कानूनी कब्जे से आजाद कराया, ये एक ऐसा हक है कि जिसको बैन अल-अक़वामी कानून सपोर्ट करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल लॉ है उसके स्ट्रक्चर के अंदर रहकर हिजबुल्ला ने अपनी एक्टिविटी की है, और वो जो रेजिस्टेंस करते हैं इसराइल के खिलाफ वो जर्मन की ताकत है, उन्होंने नाजायज कब्जा किया उससे आजादी हासिल करने के लिए अगर एक्टिविटी की है तो बिल्कुल ये एक कानूनी और जायज एक्टिविटी है और इससे किसी उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आप हिजबुल्ला की इस कानूनी हक को छीना चाहता है, रोकना चाहता है हिजबुल्ला को, तो ख्याल गैर कानूनी मुकासद शामिल हो सकते हैं। यानी जब आप यूक्रेन में या क्रीमिया में फौजी ताकत के इस्तेमाल की बात करते हैं, आपको जब बोस्निया और हिजबुल्ला में इशू आया था तो वहां पे आपने फौजी ताकत इस्तेमाल की क्योंकि उससे पूरे यूरोप के अमन को खतरा था। अब अगर आप देखते हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, लबनानियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वहां पर बड़ी ताकतें आकर अपनी ताकत इस्तेमाल करके जालिम के हाथ को रोकती नहीं है, इसलिए कि वहां पर उनके मफादात नहीं है। अब अगर बैन-अल-अक़वामी इदारे भी इस तरह जा रही है तो नहीं रोकेंगे, और जो डोमेस्टिक रेजिस्टेंस है लोकल उसको भी वो उसके भी आप बांधने की कोशिश करेंगे, तो इसका वाजे मकसद ये होगा कि जो जा रहे जालिम ताकतें हैं आप उनको आजाद छोड़ना चाह रहे हैं ताकि वो आपके मुकासद भी और जो बड़ी खतरे में मुकासद है वो हासिल कर सकें, उनकी मदद कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनी साहब। जनाब हिजबुल्लाह को लबनानी अवाम के सभी तबकात शिया और सुन्नी मुसलमानों के अलावा मुल्क के ईसाइयों की भी भरपूर हिमायत हासिल है। ऐसी तंजीम जिसकी जड़ें मुल्क के अवाम में हों और मुल्क के अवाम हुकूमत और फौज उसकी हामी हो, दूसरे मुल्कों की जानिब से इसको गैर मुसल्ला करने के मुतालबे का क्या जवाब है?
जनाब जिन बातों का आपने जिक्र किया कि सुन्नी शिया उसमें इसके अलावा ईसाई भी और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी और हत्ता के लिबरल्स भी वहाँ के वो हिजबुल्ला के हामी नज़र आते हैं, और ये हिमायत बजाते खुद मुल्क की मजबूती का, वहाँ के निज़ाम की मजबूती का, वहाँ के माशरती निज़ाम की मजबूती का और वहाँ के माशरे का सोशल सिस्टम का की यकजहती का बायस बना है। और अगर ये मुल्क अपने मजबूत होकर आगे बढ़ेगा तो ये दूसरों का मोहताज नहीं रहेगा, और जब वो दूसरों का मोहताज नहीं रहेगा तो फिर मगरबी ममालिक का वहां पे कि दाल निकलती वहां पे उनका काम नहीं चलता है। लिहाजा ये मजबूती उनके उनके लिए एक किस्म के एक चैलेंज है, उनके मफादात के लिए एक जर्ब है। अगर कोई भी मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है और मजबूती से खड़ा होता है तो वहां पर मगरबी ममालिक का क्या काम है? देखिए अब मिडल ईस्ट के ममालिक देख लीजिए, बादशाहते हैं जो कमजोर बादशाहते हैं, जो बादशाहत के निजाम से उनके अब लोग भी ज्यादा खुश नहीं है, वहां पे भी उनकी कमजोरी बायस बनती है कि मगरबी मुदाखलत और उनकी मोहताजी और उनका एहतियाज उनकी तरफ ज्यादा बढ़ता है। लबनान की भी यही सूरत हाल है कि लबनान में जो उनके इंटरनल प्लेयर्स हैं जो गैर मुल्कियों के प्रॉक्सीज के तौर पर वहां पर फराइज अंजाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अगर खुद इनका निजाम अस्करी निजाम मजबूत होगा, अगर इनका इक्तसादी निजाम मजबूत होगा, अगर इनका माशरा अपने आपस में यकजहती और इतिहाद के साथ रहेगा और दीन वहां पर एक यूनाइटिंग फोर्स का किरदार अदा करेगा तो फिर इससे लबनान के इसकी मजहबी तशखुस भी आगे बढ़ेगा। मैं इस्लामी तशखुस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजहबी तशखुस की बात कर रहा हूं। और आलमी इस्तिकबार जो है उनके कहीं कोई भी मजहब हो, किसी भी किस्म का मजहब हो, चाहे वो ईसाइत है, चाहे यहूदी मजहब है, चाहे वो इस्लाम है या कोई भी मजहब है, वो मजहबी वैल्यूज उनको सूट नहीं करती, उनके लिए मतलब है कि सेक्युलर वैल्यूज उनको सूट करती हैं कि जहां पे उनकी उनके लिए अपने अहदाब का हुसूल उनके लिए आसान हो जाता है। लिहाजा इस वजह से एक चीज है, वरना अगर देखा जाए तो वहां के मुल्क को, वहां के अंदरूनी उसका दिफा अगर किया है तो वो हिजबुल्ला ने किया है। हिजबुल्ला का ही की मजबूती ही बायस बनी कि उनका दिफा रहा है, और अभी तक जो बैरूनी खतरात का मुकाबला जिस तरीके से वहां के इस रेजिस्टेंस फोर्सेस ने किया है वो काबिले तहसीन है। और उसको देखें अगर हम तो एक यानी अगर अस्करी लिहाज से उसका तजिया किया जाए तो बड़े मजबूत अंदाज में उन्होंने उसका दिफा किया, और न सिर्फ दिफा किया है इसमें वो आगे भी बढ़े, अपनी पेशरफ भी उन्होंने हासिल किए बावजूद इसके के आलमी तौर पर उनके ऊपर पाबंदियां भी आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने मुल्क का दिफा बड़े अच्छे अंदाज में किया है। सीरिया में उन्होंने जाके सीरिया की जिस तरह मदद की, यह भी एक मिसाल है, एक ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस के तौर पर उन्होंने जाके वहां पर भी रेजिस्टेंस के हवाले से एक काम फरीजा अंजाम दिया है। इस हवाले से जो मैं कहता हूं कि जो प्रॉक्सीज हैं आलमी इस्तकबार के, उनके लिए चूंकि मसाइल बन जाते हैं और मुल्क चूंकि खुद कफालत की तरफ बढ़ जाता है अस्करी लिहाज से, तो उनके लिए एक मसला आ जाता है। दूसरी बात यह है कि वहां के माशी निजाम, माशरती निजाम, ये सारे निजाम मुल्क में यकजहती का बायस बनते हैं। लेकिन क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर जिस तरीके से सीरिया में जाके वहां के माशरती निजाम को बिल्कुल शटर कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, इक्तसादी निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया। पहले जमाने में जंगें अस्करी मैदान में हुआ करती थी, बर्री फौज होती थी, बहरी फौज होती थी, फिजाइया होती थी, ये लोग लड़ते थे। आजकल इक्तसाद के मैदान में जंग होती है, आजकल आपके माशरती उसे ये देखें जहां जहां जंगें हुई हैं वहां पे माशरती निजाम बिल्कुल तबाह के रह गया, और माशरती निजाम को कायम होने में सालों लग जाते हैं, कई मतलब सदियां लग जाती हैं जहां लोग आपस में एक माशरती लिहाज से करीब हो सके। लिहाजा इस दौर में जो खिदमात रेजिस्टेंस ने दी है, जाहिर बात है कि उससे मुल्क में यकजहती पैदा हुई है, वह अपने कदमों पर खड़े हुए हैं, मजबूती से एक किरदार अदा करें। लबनान का इस वक्त आलमी सियासत में, आलमी ममालिक में एक मुकाम पैदा हो गया है, और उस मुकाम को अगर वो कायम रहता है और आगे बढ़ता है, अगर इसमें मजीद तरक्की होती है, मजीद बेहतरी पैदा होती है, तो फिर वहां पर बैरूनी मुदाखलत का जवाज खत्म हो जाएगा। लिहाजा चूंकि बड़े ये ममालिक चाहते हैं ममालिक तरक्की करें लेकिन उनके जेर दस्त रहकर, और यह हदफ फिर उनको वह हासिल नहीं कर पाएंगे सूरत में।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदिल अब्बास साहब। ये सवाल मैं शमीम अख्तर साहब से करना चाहूँगा। जनाब लबनान में जब भी कोई बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम पाई है सऊदी हुकूमत का नाम लबनानी अवाम और हुकाम की जबानों पर आया है। हर दहशतगर्दाना कार्रवाई का सिलसिला किसी न किसी शक्ल में सऊदी अरब से जाके मिलता है। अभी हालिया दिनों में लबनान की शिमाली और मशरकी सरहदों पर जो बदअमनी है और दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की है, इसमें कई सऊदी बाशिंदे मारे गए हैं और पकड़े गए हैं। लबनान में सऊदी अरब का मफाद क्या है?
ये बात जो आपने कही
जी,
तो इसके सबूत में मैं ये कहूंगा कि बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब द वेल में इंकशाफ किया है कि सन 86 में हिजबुल्ला के जो रहबर थे उस वक्त, फजलुल्ला नाम था गालबन उनका, वो एक साजिश के तहत CIA को बंदर इब्न सुल्तान ने चेक दिया इनको कत्ल करने के लिए, और CIA मुहताज था तो बरतानिया के एक किराए के कातिल को जो स्पेशल एयर सर्विसेज का पूना मश्क एजेंट था उसको इस्तेमाल किया गया, और उसने उस इमारत में जहां हिजबुल्ला के जो रहबर थे उनका मकान था, फ्लैट था, वहां बम धमाका किया। इत्तेफाक से वो वहां मौजूद नहीं थे, तो नतीजा ये हुआ कि वो तो बच गए लेकिन उस फ्लैट में बल्कि पूरी इमारत के अंदर बड़ी तबाही फैली, बड़ा कत्लेआम हुआ, और ये बात बिल्कुल वाज़े और साबित हो गई, यहाँ तक कि बॉब वुडवर्ड ने इसको अपनी किताब में लिखा वाले तौर पे। एक दूसरी मिसाल मैं ऐड करूँगा कि हिजबुल्ला के एक रहबर थे, उन पर हमला किया गया कातिलाना और उनको शहीद कर दिया गया। जहाँ तक हिजबुल्ला का ताल्लुक है तो उसका जो किरदार है वो न सिर्फ दिफाही है बल्कि फलाही भी है, और इसका जो फलाही किरदार है उसको मंजर आम पर नहीं आने दिया जाता। हिजबुल्ला ने एक जाल बिछा रखा है वहाँ पे तालीम का और बेरोजगार लोगों और जो लोग दहशतगर्दी में ख्वाब सिया हों या सुन्नी हों, ईसाई हों, मजूसी हों, कोई भी हों, बिला लिहाज मजहब मिलत, उन सबों को एक्स्ट्रा तौर पे और बिला इम्तियाज उनकी किफालत फजलुल्ला ये करती है, हिजबुल्ला करती है। तो इस पहलू को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, इसको क्यों नहीं सामने लाया जाता और इसको दहशतगर्द साबित करने के लिए सारा मरबी मीडिया जो है एड़ी से छोटी चक्कर जोर लगाए हुए है, जबकि मैं समझता हूँ कि किराए के कातिल उसी इलाके से लाए जाते हैं। दो मिसालों को मैंने आपसे जिक्र किया और मैं समझता हूँ कि और भी मिसालें हैं जो शायद मेरे इल्म में न हो, लेकिन यकीनन जो आपने सदी झड़पों का आपने जिक्र किया है वो बड़ी काबिल तश्वीश है और ये बनमकम ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी है और लबनान को चाहिए कि इसके खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत करे।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। डेढ़ मिनट का वक्त हमारे पास है, सऊदी अरब का मसला क्या है? इराक में दहशतगर्दी है तो वहाँ उसका नाम लिया जाता है, शाम में दहशतगर्दी हो तो वहाँ, लबनान में अगर दहशतगर्द ग्रोह दाखिल होते हैं तो उनका ताल्लुक भी सऊदी अरब से साबित होता है। कंदील साहब जी, कंदील साहब से राबता मुनक़ता हो चुका है और हमारा वक्त भी अब ज़्यादा नहीं रह गया, इसलिए मुशर्रफ हुसैनी साहब से हम कोई सवाल नहीं करेंगे। बहरहाल हकीकत यह है कि इस खित्ते में जहाँ भी दहशतगर्दी है, चाहे इराक में दहशतगर्दाना, इराक में तो जब से दहशतगर्दी हो रही है, जब से अमरीकी अफवाज आई हैं और उनके आने के बाद वहाँ पर दहशतगर्दाना हमले शुरू हुए हैं, बम के धमाके शुरू हुए हैं, इराकी अवाम, इराकी लीडरान, इराकी हुक्काम साफ और वाज़े लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि उनके मुल्क में बदमनी और दहशतगर्दी में सऊदी हुकूमत का हाथ है और बहुत से दर्जनों सऊदी दहशतगर्द इराक में पकड़े गए हैं जो इराक की जेलों में और दर्जनों मारे गए हैं। शाम में दहशतगर्दी फैलाने में सऊदी अरब का किरदार पूरी दुनिया पर आया है और लबनान के ताल्लुक से भी, जितने भी लबनान में दहशतगर्दाना हमले होते हैं किसी न किसी शक्ल में उनमें मुलव्वस अफराद का ताल्लुक सऊदी अरब से जाकर मिलता है। और मज़े की बात यह है कि अभी एतवार को सऊदी अरब की वजारत औकाफ़ व मजहबी उमूर ने एक बयान जारी करके मुख्तलिफ मुल्कों में सरगर्म मुसल्ला ग्रोहों की हिमायत किए जाने पर जोर दिया है और साफ और वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा है कि पूरी दुनिया से जो तलबा सऊदी अरब आते हैं उनको ये समझाया जाए कि पूरी दुनिया में सरगर्म मुसल्ला ग्रोहों की हिमायत से बकौल उनके जज्बे जिहाद की तकवियत होगी। और मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दावेदार अमेरिका बहादुर ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया है और अमेरिका का सारा एतराज़ उन फोर्सेस पर है, उन ताकतों पर है, उन मुल्कों पर है जो दहशतगर्दी के खिलाफ वाकई सरगर्म है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@rsrtv.ir। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।